आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की बुक फर्स्ट फ्लाइट के यूनिट थर्ड की सेकंड स्टोरी को। इस यूनिट का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और आज हम इसकी सेकंड स्टोरी कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ने के लिए आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 37 पर आइए। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस स्टोरी की समरी दे देती हूँ कि हम इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लाइन टू लाइन हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। अब ये जो स्टोरी है ये एक मिस्ट्री स्टोरी है, यानी एक रहस्य कथा है। एक बार लेखक अपना पुराना छोटा एरोप्लेन लेकर उड़ रहा था। अचानक वो घने काले तूफानी बादलों से घिर गया। उसका एरोप्लेन में कंपास, रेडियो और बाकी जितने भी यंत्र थे वो सभी काम करना बंद कर चुके थे। एरोप्लेन से बाहर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्यवश लेखक ने अपने बिल्कुल पास एक और एरोप्लेन को देखा। ये काले रंग का एरोप्लेन था। इसके चालक ने लेखक को इशारे से कहा कि वे उसके पीछे पीछे चलता जाए। लेखक काले हवाई जहाज के पीछे पीछे चलता गया। आखिर में घने काले तूफान से वो बाहर आ गया। दूसरा जो एरोप्लेन था वो आकाश में कहीं गायब हो गया। लेखक चलकर कंट्रोल रूम में गया, जिसे हम नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। वो जानना चाहता था कि वो दूसरा चालक था कौन, वो दूसरा पायलट कौन था जिसने उसकी इतनी हेल्प की। लेकिन कंट्रोल रूम में एक औरत ने उसे बताया कि उस रात आकाश में कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। उसने कहा कि आपका ही एक एरोप्लेन था जिसे मैं रेडार पर देख सकती थी, इसके अलावा कोई और एरोप्लेन वहां पर नहीं था। तो यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि आखिर वो दूसरा एरोप्लेन था किसका और वो कहाँ गया और उन्होंने लेखक की मदद क्यों की। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस मिस्ट्री स्टोरी को शुरू से आखिर तक अच्छे से पढ़ते हैं। आप सभी पेज नंबर 37 पर आइए, पार्ट टू, द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. अब यहाँ जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट किया है ये कहते हुए कि चांद मेरे पीछे की तरफ पूर्व दिशा से उदय हो रहा था और मेरे ऊपर की तरफ साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था और लेखक को प्रसन्नता हो रही थी कि वो सोए हुए ग्रामीण प्रदेश के ऊपर से आकाश में अकेला था। लेखक अपना पुराना डकोटा एयरप्लेन फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा था। लेखक अपनी छुट्टियों के बारे में सपने ले रहा था और वो अपने परिवार से मिलने की उत्सुकता से वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी घड़ी पर देखा, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. फिर लेखक ने सोचा कि वो जल्द ही पेरिस के कंट्रोल रूम से बात करनी उसे चाहिए। जब उसने एरोप्लेन के आगे के हिस्से से नीचे देखा तो उसने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियों को देखा। उसने रेडियो का बटन दबाया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, यहाँ डकोटा DS-088 है, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, डीएस 088. I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. रेडियो से आवाज आई और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, DS-088, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ घूम जाना चाहिए। DS-088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. फिर लेखक ने नक्शे और कंपास की जांच की, अपनी दूसरी और अंतिम तेल टंकी के स्विच को दबाकर चालू कर दिया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. फिर लेखक ने सोचा कि मैं नाश्ते तक के समय तक पहुंच जाऊंगा। एक बढ़िया बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। हर चीज ठीक जा रही थी और ये एक बहुत आसान उड़ान लेखक को लग रही थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब लेखक को बादल दिखाई दिए, तूफानी बादल। वो बहुत बड़े बड़े थे, वे काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे और आकाश के आर पार उसके आगे की तरफ खड़े थे। लेखक जानता था कि वो उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था और उसके पास इतना ईंधन यानी फ्यूल भी नहीं था कि वो उनके इर्द गिर्द उत्तर या दक्षिण की तरफ से होकर उड़ान भर सके। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. लेखक ने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो घर जाना चाहता था। वो नाश्ता करना चाहता था जिसके बारे में वो सपने ले रहा था। I will take the risk, I thought. And flew that old Dakota straight into the storm. फिर लेखक ने सोचा कि मैं ये जोखिम उठा लूंगा और वो अपने पुराने डकोटा को सीधा तूफान के अंदर उड़ा कर ले गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 38 पर आइए। My eyes, the compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. फिर बादलों के अंदर हर चीज अचानक से काली लगने लगी। एरोप्लेन से बाहर की तरफ कुछ भी देख पाना असंभव था। पुराना एरोप्लेन हवा में उछलने लगा और बल खाने लगा। लेखक ने कंपास की तरफ देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। कंपास की सुई चारों तरफ घूमती ही जा रही थी और घूमती ही जा रही थी। इसने काम करना बंद कर दिया था और ये ठीक नहीं हो पा रही थी। बाकी जितने भी यंत्र हैं वो भी बिल्कुल रुक चुके थे। और अब उस पायलट ने यानी हमारे लेखक ने सोचा कि चलो रेडियो ही चलाकर देख लिया जाए। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? तब लेखक ने आवाज लगाई, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। I was lost in the storm. Then, in the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Jab लेखक ने रेडियो पर बात करने की कोशिश की तो कोई भी उत्तर ना आया। रेडियो भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके पास कोई रेडियो, कोई कंपास, कुछ भी नहीं था और उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था कि वो कहां पर है। वो तूफान में खो गया था। तब काले बादलों में अपने बिल्कुल नजदीक उसे एक और एरोप्लेन नजर आया। इसके पंखों पर कोई भी रोशनी नहीं थी, लेकिन लेखक इसे तूफान में अपने बगल से उड़ता हुआ देख सकता था। उसने चालक के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर चालक का चेहरा उसकी तरफ मुड़ा। एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ देखकर लेखक को बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसने अपना एक हाथ उठा लिया और हिलाकर इशारा किया, "Follow me," he was saying, "Follow me." उसने कहा, "मेरे पीछे चलते आओ, मेरे पीछे चलते आओ." He knows that I was lost. I thought he is trying to help me. फिर लेखक को लगा कि वो जानता था कि वो खो गया है और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. उसने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे उत्तर की तरफ घुमाया और लेखक के डकोटा के आगे आगे उसे कर लिया, ताकि उसके लिए उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे जाना आसान हो जाए। और लेखक भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चलता जा रहा था, और इस ऐसे चलने में उसे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now, चलिए students, page number 39 पर आइए। There was only enough fuel in my old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. But then he started to go down and I followed through the storm. आधे घंटे के बाद वो अजीब काला एरोप्लेन बादलों के बीच अब भी लेखक के आगे आगे था। अब उस पुराने डकोटा की अंतिम टंकी में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ान भरने के लिए ही ईंधन था। अब लेखक फिर से डर महसूस करने लगा था, लेकिन फिर वो नीचे की ओर उतरने लगा और लेखक ने भी उसका पीछा करते हुए नीचे की ओर उस तूफान में से निकलना शुरू कर दिया। Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अचानक लेखक बादलों से बाहर आ गए और उन्होंने अपने सामने दो लंबी सीधी कतारें दिखाई दी जो कि रोशनी की थी। एक हवाई पट्टी थी, एक हवाई अड्डा, और लेखक ने महसूस किया कि अब वो सुरक्षित था। लेखक उस काले एरोप्लेन यानी ब्लैक एरोप्लेन में अपने दोस्त को देखने के लिए घूमा, लेकिन आकाश खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब लेखक नीचे उतर गया और उसे इस बात का कोई भी खेद नहीं था जब वो कंट्रोल टावर के नजदीक पुराने डकोटा को छोड़कर चल दिया। वहां जाकर कंट्रोल केंद्र में एक औरत से उसने पूछा कि मैं कहां था और वो दूसरा जो एरोप्लेन चालक था वो कौन था। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed. उस औरत ने उस पायलट की तरफ बहुत अजीब ढंग से देखा और उसके बाद फिर हंस दी। Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. फिर उस औरत ने कहा, कोई दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में वहां ऊपर? आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं था, आपका ही एक एरोप्लेन था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? फिर आखिर में ये बात सुनने के बाद लेखक का दिमाग ठनका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसके मन में ये बात आई कि वो कौन था जिसने उसे यहाँ तक सुरक्षित पहुँचने में मदद की, जबकि उसके पास ना तो कोई कंपास था, ना रेडियो, और उसके टंकियों में ज्यादा ईंधन भी नहीं रहा था। उस अजीब काले एरोप्लेन में बैठा वो चालक कौन था जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहा था? ये सारी बातें अपने दिमाग में रखकर लेखक वहां से चला गया, क्योंकि इसका आंसर कभी मिला ही नहीं कि आखिर वो कौन था, वो ब्लैक एरोप्लेन कैसा था, किसका था, और उसमें जो चालक था वो कौन था, और उसने लेखक की मदद क्यों की। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं पता चले। तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं जो कि आपको पेज नंबर 40 पर मिलेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन 1, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है कि हमने एक सेंटेंस पढ़ा है स्टोरी में, आई विल टेक द रिस्क, यानी मैं ये जोखिम उठा लूंगा। कौन सा जोखिम, और नरेटर उसे क्यों लेना चाहता है, यानी लेखक उस जोखिम को क्यों लेना चाहता है? तो इसका आंसर है, There were storm clouds and it was risky to fly through them, but the narrator decided to take the risk. He was anxious to get home and have breakfast with the family. तो स्टूडेंट्स, रिस्क था उस तूफानी बादलों में से निकलकर जाने का, और यही रिस्क उस लेखक ने ले लिया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता था और अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करना चाहता था। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म। अब जब लेखक ने एरोप्लेन उस स्टॉर्म में से, उस तूफान में से उड़ाया, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसे आपको डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर है, एज द नरेटर फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म, It became suddenly dark inside. The narrator could see nothing outside his plane. His aeroplane jumped and twisted in air. His compass, radio, and all other instruments were suddenly dead. He didn't know which way he was going. तो students, जैसे ही डकोटा को लेकर वो लेखक अब तूफान में गया, तो सब कुछ काला काला हो गया, हर जगह अंधेरा छा गया, और लेखक को एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और उसका एरोप्लेन हवा में बल खाता हुआ चल रहा था। उसका कंपास, रेडियो और जितने भी यंत्र थे वो सारे खराब हो चुके थे, और उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन 3, व्हाई डज द नरेटर से, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। नरेटर ने ये क्यों कहा कि मैं अपने विमान से उतर आया, अपने एरोप्लेन से उतर आया, और मैं सीधा उससे निकल गया, और उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा। तो इसका आंसर है, द नरेटर हैड लैंडेड सेफली आफ्टर द हॉरिबल एक्सपीरियंस इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। नेचुरली ही वाज हैप्पी व्हेन ही लैंडेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम हिज ओल्ड डकोटा। देखिए स्टूडेंट्स, जब नरेटर जो है, हमारे लेखक जो है, वो उस तूफान में फंस गए थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, फिर उनके पास इतना ईंधन भी नहीं था, तो वो और ज्यादा डरे हुए थे। तो आखिरकार जब वो सेफली, बिल्कुल सुरक्षित हवाई अड्डे पर पहुंच गए, तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई, और खुशी होना लाजमी भी है क्योंकि अब उनके जान को कोई भी खतरा नहीं था। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल रूम में जो औरत बैठी थी, उसने नरेटर की तरफ यानी लेखक की तरफ अजीब ढंग से क्यों देखा? तो इसका आंसर है, द नरेटर आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर द अदर पायलट वाज हु हैड लैंडेड देयर, बट द वुमेन लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली एंड सेड, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। स्टूडेंट्स, जैसे ही जो नरेटर है, लेखक है, वो हवाई अड्डे पर उतरे, वो सीधा भागकर कंट्रोल सेंटर गए, क्योंकि वो
जानना चाहते थे कि वो दूसरे एरोप्लेन में चालक कौन था, पायलट कौन था, और उसे वो थैंक यू करना चाहते थे। तो जब उन्होंने जाकर वहां मौजूद लेडी, वहां मौजूद औरत से पूछा कि वो दूसरा चालक कौन था और दूसरा एरोप्लेन वो गया कहाँ, तब उन्होंने बताया कि कोई और एरोप्लेन तो उड़ ही नहीं रहा था, रेडार पर बस एक ही एरोप्लेन नजर आ रहा था, और इसी वजह से उस औरत ने उन्हें स्ट्रेंजली देखा कि ये कैसा आदमी है, एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था वो भी इसका, और फिर भी ये पूछ रहा है बताओ दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, जबकि दूसरा एरोप्लेन कोई था ही नहीं। क्वेश्चन 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि आपके अनुसार आप क्या समझते हैं कि किसने लेखक की मदद की थी। इस बात को आपको डिस्कस करना है, रीजंस देने हैं, फैक्ट्स देने हैं। इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, इट वॉज सम सुपर नेचुरल एजेंसी दैट हेल्प द नरेटर टू रीच हिज डेस्टिनेशन सेफली, देयर कैन बी नो लॉजिकल आंसर टू द मिस्ट्री ऑफ हिज फ्लाइट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, और इट कुड जस्ट द पायलट्स ओन हेलुसिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, एक आंसर आप ये देख सकते हैं कि हाँ, कोई सुपर नेचुरल थिंग होगी, कोई ऐसे मैजिक होगा या भगवान का भेजा कोई दूत होगा, जैसे भी उसे एक्सप्लेन करना चाहें आप उसका भी एक रीजन दे सकते हैं कि ये चीज हो सकती है, लेकिन कोई लॉजिकल रीजन इसमें नजर नहीं आ रहा कि किसने हेल्प की होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये नरेटर को खुद ही हेलुसिनेशंस हो रही हो, नरेटर को खुद ही लग रहा हो कि उसकी कोई हेल्प कर रहा है, पर असल में वो खुद अपनी हेल्प कर रहा हो, उसके मन में जो उसकी विल पावर है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, करेज है, वही उसके सामने आ रहा हो, और उसने अपनी हेल्प खुद की हो, बस उससे हेलुसिनेशन हो रही हो कि हाँ किसी और ने मेरी हेल्प की है, ये भी हो सकता है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसे जैसे आप चाहें वैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 1, स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। ए, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। बी, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर अचानक से सब कुछ काला हो गया था। थर्ड, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, जो काले बादल थे जो लेखक के आसपास थे उसमें उसने एक और एरोप्लेन देखा। बी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज देयर, अजीब काले रंग का एरोप्लेन वहां पर था। द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंसेस ए एंड सी रेफर्स टू द वेरी डार्केस्ट कलर, बट इन बी एंड डी इट मीन्स विदाउट लाइट विद नो लाइट। तो स्टूडेंट्स, जो पार्ट ए और सी में ब्लैक वर्ड का यूज हुआ है, ये असल में कलर को सिग्निफाई किया जा रहा है, और जो बी और डी में यूज किया गया है, यहाँ पर इसका मतलब है विदाउट लाइट, जिसमें कोई लाइट ना हो। ब्लैक हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ब्लैक का हर कंटेक्स्ट में अलग मीनिंग चला जाता है। यहाँ दो एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट, I prefer black tea means I prefer tea without milk. Black tea का मतलब है tea without milk. तो देखिए, word तो black है, black यानी काली, काली कैसी होगी जिसमें दूध नहीं होगा, तो इसलिए black tea का मतलब है tea without milk, जिसमें दूध नहीं है। B, with increasing pollution in the future of the world is black means with increasing pollution the future of the world is very depressing without hope. अब हम कहते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसका फ्यूचर ब्लैक है। अब ब्लैक का मतलब ये थोड़ी ना है कि काला है, रंग थोड़ी ना है कि सारी दुनिया फिर काली काली हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें कोई होप नहीं है, उसका बहुत ही डिप्रेसिंग फ्यूचर हमारा होने वाला है, बहुत ही दुखदायी फ्यूचर होने वाला है। तो यहाँ देखिए, ब्लैक का मतलब दुखदायी और डिप्रेसिंग भी आ रहा है। Now try to guess the meanings of the word black in the sentences given below. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed right. तो यहाँ पर black के आपको और मतलब ढूंढने हैं, यहाँ कुछ questions दिए गए हैं, और उसके बाद आप अपने answers को dictionary में से check भी कर सकते हैं। आइए students, हम guess करते हैं कि यहाँ पर black का क्या मतलब हो सकता है। Question 1, Go and have a bath. Your hands and face are absolutely blank. यहाँ कहा गया है जाओ और जाकर नहा लो, तुम्हारे हाथ और मुंह बिल्कुल काले हो चुके हैं। तो यहाँ ब्लैक का मतलब हो सकता है डर्टी, डर्टी यानी गंदे जिन पर मिट्टी लग गई हो। क्वेश्चन टू, द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। अब यहाँ ब्लैक लुक की बात की गई है, यानी यहाँ एक गुस्से वाला लुक की हम बात कह सकते हैं, एंग्री यहाँ पर वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि रतन जो है उसने रोड तब क्रॉस किया जब ग्रीन लाइट ऑन थी, तो टैक्सी ड्राइवर ने उसे कैसा लुक दिया होगा, गुस्से में ही दिया होगा, नहीं तो क्या पता टैक्सी ड्राइवर और रतन का एक्सीडेंट हो जाता। क्वेश्चन थ्री, द बम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। स्टूडेंट्स, जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी तो हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले गए थे, तो हम उसे कहते हैं ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी ये बहुत ही सीवियर क्राइम है, इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, तो यहाँ हम वर्ड यूज कर सकते हैं सीवियर। फोर्थ, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हैरल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। कुछ ही लोग हैरल्ड पिंटर की ब्लैक कॉमेडी को एंजॉय करते हैं। ब्लैक कॉमेडी का मतलब यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉमेडी जो पुरानी कॉमेडीज आती थी, जैसे आपने चार्ली चैपलिन की देखी होगी, या फिर ब्लैक कॉमेडी का मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ डिप्रेसिंग वर्ड्स या डिप्रेसिंग इश्यूज को उठाकर उसमें कॉमेडी डाली गई हो। क्वेश्चन फाइव, समटाइम्स शॉपकीपर स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कार्सिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक। कभी कभी क्या होता है कि शॉपकीपर्स जो होते हैं वो काफी सारे असेंशियल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जिनकी जरूरत पड़ती ही रहती है, ऐसे चीजों का स्टॉक बना लेते हैं, और उसके बाद जब उनके रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड तो लोगों में है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही, अब जितनी सप्लाई होगी उसके रेट तो बढ़कर जाएंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो जैसे ही उनके रेट बढ़ने लग जाते हैं उन चीजों के, वो धीरे धीरे बेचते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ब्लैक में बेच दिया। अब ब्लैक में बेच दिया का क्या मतलब है, उसे इलीगली बेच दिया, तो यहाँ ब्लैक का मतलब है इलीगल। क्वेश्चन सिक्स, विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू। अब यहाँ बात है कि जो गांव वाले हैं उन्होंने एक क्रिमिनल है उसे ब्लैक एंड ब्लू तरीके से मारा, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई कलर कर दिया, इसका मतलब ये है कि बहुत सीवियरली मारा है, बहुत बुरे तरह से उसे मारा है, तो यहाँ ब्लैक का मतलब सीवियरली हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 41 पर आइए, पार्ट टू, लुक एट दी सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम दी लेसन यू हैव जस्ट रेड। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आइए इन्हें मेरे साथ पढ़िए। पार्ट ए, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन। मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। पार्ट टू, द यंग सी गुल हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। जो यंग समुद्री मुर्ग था वो उड़ने से डर रहा था। इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑथर वॉज कंट्रोलिंग एन एयरक्राफ्ट इन द एयर। अनदर एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। इन द सेकेंड सेंटेंस द सी गुल वॉज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग्स। पहले सेंटेंस में तो एक ह्यूमन है, एक इंसान है जो एक एयरक्राफ्ट यानी एक एरोप्लेन की मदद से हवा में उड़ रहा है, और दूसरे सेंटेंस में एक सीगुल है, एक बर्ड है जो नेचुरली उड़ सकते हैं लेकिन वो फिर भी उड़ने से डर रहा है। मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए विद द मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ फ्रेज दिए गए हैं, उनकी मीनिंग कॉलम बी में है, आपको सही मीनिंग के साथ हर फ्रेज को मैच करना है। फ्लाई अ फ्लैग, इसका मतलब है डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। फ्लाई इनटू रेज, बिकम सडनली वेरी एंग्री। फ्लाई अलोंग, इसका मतलब है मूव क्विकली सडनली। फ्लाई हाई, इसका मतलब है बी सक्सेसफुल। फ्लाई द कूप, इसका मतलब है एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। पार्ट थ्री, वी नो दैट द वर्ड फ्लाई मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स। टेक द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम और नियरली सेम मीनिंग। स्टूडेंट्स, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। इसी से मिलते जुलते और कौन से वर्ड हो सकते हैं, मतलब जिनका मतलब उड़ना ही होगा वो कौन से वर्ड हो सकते हैं, इसे आप यहाँ से ढूंढिए। जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि सेम वर्ड सेम मीनिंग किसका है, और उन्हें फिर आपको एनसर्कल करना है। जैसे स्वूप, फ्लिट, पैडल, फ्लटर, एसेंट, फ्लोट, राइड, स्किम, सिंक, डार्ट, होवर, ग्लाइड, डिसेंट, सोर, शूट, स्प्रिंग, स्टे, फॉल, सेल, फ्लैप। तो इनमें जैसे कुछ वर्ड्स हैं फ्लैप, सोर और होवर, फ्लटर, ये सभी वर्ड्स फ्लाई से मिलते जुलते ही वर्ड्स हैं। बाकी आपको जो भी वर्ड डिक्शनरी में आपको देखना है और जो भी वर्ड फ्लाई मीनिंग वाला होगा उसे आपको सर्कल करना है। राइटिंग। Have you ever been alone or away from home during a thunderstorm? Narrate your experience in a paragraph. क्या आप कभी घर पर अकेले थे जब कभी तूफान आया हो? आपको अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आपको इसे एक पैराग्राफ में लिखना है, और अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको अपनी इमेजिनेशन से ये पैराग्राफ लिखना है। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने दो स्टोरीज को पढ़ा है और ये दोनों ही स्टोरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। हमने एक स्टोरी पढ़ी है एक बर्ड के बारे में और दूसरी स्टोरी पढ़ी है एक ह्यूमन बीइंग के बारे में जो एक एरोप्लेन उड़ा रहा था। अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि जब एक बेबी चलना सीखता है तो उसे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ता है, और एक जो सीगल या कोई भी बर्ड है जब वो उड़ना सीखता है तो उसे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक पे ये सोचना है कि सामने वाले ने ये कैसे किया। कोई एनिमल है वो कैसे चलना सीखता है, घोड़ा अगर है वो अभी बेबी हॉर्स है तो वो कूदना कैसे सीखता है, इस सब के बारे में भी आपको सोचना है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब मैं आपको फटाफट से आज की स्टोरी का रिकैप देती हूँ और उसके बाद हम लेसन को खत्म करेंगे। आज की स्टोरी में हमने देखा कि एक लेखक है, एक वो एक पायलट है और वो अपने घर वापस इंग्लैंड जाना चाहता है। वो पेरिस से चलकर जा रहा है और वो इंग्लैंड पहुंचना चाहता है। इंग्लैंड वो क्यों जाना चाहता है, इंग्लैंड इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करना चाहता है और वो बहुत ज्यादा खुश है। जब वो पेरिस से चलता है तो वो देखता है मौसम बड़ा साफ है और बहुत ही अच्छा मौसम है, 1:30 बजे हुए हैं और वो ब्रेकफास्ट टाइम तक अपने घर पहुंच जाएगा। फिर वो आगे चलता रहता है, वो पेरिस कंट्रोल रूम से भी बात कर लेता है, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसका जो फ्यूल टैंक होता है उसमें फ्यूल कम होता है। वो ये सोचता है अभी मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा तो ज्यादा फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके वो निकल पड़ता है, अपना रेडियो, अपना कंपास, सब कुछ वो चेक करता है। जब वो आगे जा रहा होता है और पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर होता है तो अचानक उसके सामने बड़े बड़े काले घने बादल आ जाते हैं। ये देखकर जो पायलट है, जो नरेटर है, वो डर जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो पेरिस वापस आ जाए या फिर वो इस स्टॉर्म में से गुजर के जाए, क्योंकि वो स्टॉर्म के ऊपर नहीं जा सकता, वो बहुत बड़ा स्टॉर्म था, ना नीचे जा सकता है। दूसरा, अब उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था, इतना ईंधन भी नहीं था कि उसके आसपास से मंडरा के कहीं से चला जाए, इतना ज्यादा वो ईंधन वेस्ट भी नहीं कर सकता था। तो पायलट ने चुना कि वो सीधा इस स्टॉर्म में से निकल के जाएगा, वो वापस पेरिस नहीं जाएगा, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। तो ये सोच के वो सीधा अपने डकोटा एयरप्लेन को लेके उस स्टॉर्म के अंदर घुस जाता है और वो देखता है कि आसपास हर चीज काली हो चुकी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो और ज्यादा डर जाता है, ना उसका रेडियो काम करता है, ना कंपास, कुछ भी उसका इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से उसका डर बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन अचानक फिर वो अपने पास एक ब्लैक एरोप्लेन को देखता है, उसमें कोई भी लाइट नहीं लगी होती और उसका जो पायलट था, उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, इस पायलट को इशारा करता है कि मेरे को फॉलो करो, और उसके बाद वो अपने फ्लाइट, अपने एयरप्लेन को लेकर उसके सामने आ जाता है और ये जो नरेटर है ये उसे अच्छे से फॉलो करते हैं। फॉलो करते करते जब आधा घंटा हो जाता है तब नरेटर ये सोचता है कि अब क्या होगा, अभी तक हम अपने रास्ते पर नहीं पहुंचे, हम इस स्टॉर्म से निकले नहीं है और मेरे जो टैंक है उसमें फ्यूल भी बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट तक मैं इसे चला पाऊंगा। उसके बाद वो देखता है कि जो सामने वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो एरोप्लेन को नीचे की ओर लेके जा रहा है। लेखक भी बिल्कुल वैसे ही उसे फॉलो करता है। जब वो नीचे की ओर जाता है तो देखता है कि सामने दो सीधी लाइन है रोशनी की। वो एक हवाई अड्डे पर पहुंच गया था और वो बिल्कुल सेफ था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो अपने डकोटा एयरप्लेन से बाहर निकलता है और सीधा कंट्रोल रूम जाता है, क्योंकि आसपास उसे कहीं भी वो ब्लैक एरोप्लेन नजर नहीं आ रहा होता। वो कंट्रोल रूम जाता है और वहां मौजूद उस लेडी से पूछता है कि जो मेरे से पहले यहाँ ब्लैक एरोप्लेन आया था वो कहाँ है और उसका पायलट कौन था, मैं उसे थैंक यू करना चाहता हूँ। लेकिन वहां मौजूद लेडी बताती है कि उसके अलावा उस रात को कोई भी उस आसमान में नहीं था। रेडार में सिर्फ एक ही एरोप्लेन नजर आ रहा था और वो इसका एरोप्लेन था, इसके अलावा कोई भी एरोप्लेन नहीं था। तो इस तरह से ये एक मिस्ट्री स्टोरी बन जाती है कि आखिर जो हमारा लेखक है उसकी हेल्प मदद की तो किसने की। तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। ये एक मिस्ट्री स्टोरी है, इसकी एक ओपन एंडिंग है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेखक की मदद किसने की, क्या कोई सुपर नेचुरल ताकत थी या फिर लेखक की इमेजिनेशन थी कि उसके किसी ने मदद की, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर देने हैं। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।